नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ अज्ञान्तमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन्वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे आराध्यो भगवान व्रजे सतनय तद्धाम वृंदावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गे नया कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमपुमर्तो महान् श्रीचैतन्यमहाप्रभुर्मत्मिदं तत्रार्पराणापरः
हरे कृष्णा। सो सभी उपस्थित भक्तजनों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। सबसे पहले मैं अपने आध्यात्मिक गुरु के श्री चरणों में नमन करता हूँ। तत्पश्चात इस्कॉन के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के चरणों में अपना प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने पूरी दुनिया भर में भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम के आधार पर श्री श्री राधा कृष्ण की महिमा का प्रसारण किया है। मैं तत्पश्चात श्रीमन महाप्रभु श्री चैतन्य के चरणों में अपना प्रणाम करता हूँ, जो कलयुग के छद्म अवतार है और स्वयं कृष्ण है और राधा रानी का भाव लेकर प्रकट हुए हैं हमें यह बताने के लिए कि भक्ति कैसे की जाए। और अंत में हमारे प्रियतम भगवान श्री श्री राधा गोपीनाथ जी को नमन करता हूँ, ताकि उनकी प्रसन्नता के लिए और अपने शुद्धिकरण के लिए आज हम इस्कॉन डिजायर ट्री हरे कृष्णा टीवी द्वारा आयोजित श्री राधा अष्टमी महामहोत्सव के उपलक्ष्य में कुछ सुनने और बोलने का प्रयास कर सकें। श्रीमती राधा रानी के बारे में बोलना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि हम में ना तो पवित्रता है, ना ही कोई समझ है, ना ही कोई एहसास है और ना ही कोई साक्षात्कार ही है। परंतु शिला प्रभुपाद जी और पूर्ववर्ती आचार्यों के बतलाए हुए मार्ग पे और उनकी कृपा से, क्योंकि हमें कुछ सेवा दी गई है, हम कुछ बोलने और सुनने का प्रयास करेंगे। क्योंकि कलयुग का एक मंद बुद्धि जीव क्या समझ सकता है और क्या बोल सकता है। चैतन्य चरितामृत में श्री चैतन्य महाप्रभु जब अपनी दक्षिण भारत की यात्रा पे होते हैं तो श्रीरंग क्षेत्र में श्रीरंगम में वेंकट भट्ट के घर पे निवास करते हैं और वेंकट भट्ट के साथ उनका कुछ वार्तालाप होता है और श्री चैतन्य महाप्रभु उनसे पूछते हैं कि हे वेंकट भट्ट, आप लक्ष्मी नारायण की आराधना करते हो, पर बताओ मुझे कि लक्ष्मी को रासलीला में क्यों जाने नहीं मिला, या वो क्यों रासलीला में जाना चाहती थी? तो वेंकट भट्ट ने कहा कि कृष्ण और नारायण में तो कोई अंतर नहीं है, और यदि लक्ष्मी रासलीला में जाने का प्रयास करे तो इसमें कोई विचित्र बात नहीं है। तो फिर महाप्रभु कहते हैं कि लेकिन लक्ष्मी जी को रासलीला में एंट्री क्यों नहीं मिली? तब कई पश्चात तर्क वितर्क करने के बाद में वेंकट भट्ट श्री चैतन्य महाप्रभु को कहते हैं, आमी जीव क्षुद्र बुद्धि सहज अस्थिर ईश्वरेर लीला कोटि समुद्र गंभीर। वो कहते हैं कि आमी जीव क्षुद्र बुद्धि, के हे महाप्रभु, मैं तो एक छोटा सा जीव हूँ और मेरी बुद्धि भी सीमित है और बहुत अस्थिर बुद्धि है मेरी, मैं ईश्वर की लीला के बारे में क्या जानूं जो समुद्र के समान गहराई वाली है। तो हम 1/10,000 सिर के अग्रभाग के हिस्से हैं और हम क्या भगवान के बारे में कुछ कह पाए या कुछ बता पाए? ये उसी प्रकार से है कि कोई प्रशांत महासागर के तट पे एक छोटा सा मेंढक बैठा है और समुद्र की गहराई को जानने की कोशिश करता हो, ये संभव नहीं। वो मेंढक चाहे टर्र टर्र टर्राता हो लेकिन उससे केवल अपने मृत्यु को आकर्षित करता है। लेकिन क्योंकि हमारी जिह्वा यदि भगवान का नाम न लेगी, भगवान के गुणानुवाद का वर्णन नहीं करेगी, तो अन्यथा रूप ले लेगी। जैसे मैत्री मुनि श्रीमद् भागवतम में विदुर को अपने भाव प्रकट करते हुए कहते हैं, तथापि कीर्तयामि अंग यथामति यथा श्रुतम कीर्तिम स्वम सत हरि कर्तुम गिरा अन्याभिदासिते। तो कहते हैं कि हे विदुर, आप मुझसे अनेकानेक प्रश्न कर रहे हो, मेरी तो कोई योग्यता नहीं है, तथापि कीर्तयामि अंग, लेकिन फिर भी मैं भगवान के बारे में आपको कुछ बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मेरी जिह्वा जो है वो एक वैश्या का रूप ले लेगी। और इसीलिए कहा गया कि आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बली काम कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। किसी की अपनी इंद्रियों को तृप्त करने की इच्छा जो है वह काम या वासना है, लेकिन भगवान के इंद्रियों को प्रसन्न करने की इच्छा प्रेम है। इसीलिए हम भगवान की इच्छा उनके चित्त को आकर्षित करने के लिए और अपने चित्त का शुद्धिकरण के लिए भगवत कथा करते हैं या सुनते हैं, और केवल हम गुरु और शुद्ध भक्तों की कृपा या उनकी दया से ही इसको समझ सकते हैं। श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सदमा। हम हमारे आध्यात्मिक गुरु के चरण कमल वही एक ऐसा मार्ग है जिससे हम शुद्ध भक्ति की सेवा प्राप्त कर सकते हैं, और उनके चरण कमलों को नमन करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। और जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने हमको ये मार्ग बताया है, उसी मार्ग पे उनके विचारों का स्मरण करते हुए, उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करते हुए, और हम आज श्रीमती राधा रानी के इस महोत्सव पर कुछ चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो शीला का क्या मतलब होता है? श्री का मतलब होता है आध्यात्मिक शक्तियाँ या आध्यात्मिक ऐश्वर्य, और ला का मतलब होता है लीला, अर्थात जिनके पास कृष्ण की लीलाओं को समझने की आध्यात्मिक शक्ति है उस व्यक्ति को शीला कहा जाता है। तो जैसे शीला प्रभुपाद केवल भगवान की लीला को समझ सकते हैं, और हम जो है वो केवल उनकी बातों को सुनकर और उसे उस पर मनन करने का प्रयास कर सकते हैं। वे श्रीमती राधा रानी के प्रतिनिधित्व है, और इस विषय पर बोलना आसान नहीं है, इसलिए मैं परम पूज्य जयद्वैत महाराज, जिन्होंने हमारे एक मैगजीन है बैक टू गॉड हेड भगवत दर्शन मैगजीन, उसमें कई वर्ष पूर्व एक आर्टिकल लिखा था, हुज डैट गर्ल विथ कृष्णा, अर्थात कृष्ण के साथ वह युवती कौन है। क्योंकि अमेरिका में जब श्रील प्रभुपाद जी गए और उन्होंने हरे कृष्ण आंदोलन का स्थापना किया, और जब श्री विग्रह की स्थापना की उन्होंने मंदिरों में, तो कई लोग आते थे जो भगवान के बारे में कुछ नहीं जानते थे और ना ही कृष्ण के बारे में कुछ जानते थे, तो वो आके प्रश्न पूछते थे कि ये कौन है, तो बताते कि ये कृष्ण है। और फिर उनका दूसरा प्रश्न होता था, हु इज दैट गर्ल विद कृष्णा, वो कृष्ण के साथ वो युवती, वो सुंदरी कौन है। तो उन्होंने इस प्रश्न के ऊपर एक आर्टिकल लिखा, वो उसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो वे कहते हैं कि प्रसन्नता क्या है, हु इज द प्लेजर पोटेंसी। तो हर व्यक्ति स्वाभाविक रूप से आनंद लेना चाहता है, क्योंकि हम जो आत्मा है आनंदमय अभ्यासात, हमेशा आनंद पाने के फिराक में रहते हैं और अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए दूसरों के संगति की हमको जरूरत पड़ती है। हालांकि भगवान कृष्ण जो है वह सर्वोच्च भगवान है, परम नियंता है, आदि अनंत जो है वह अपने आप से स्रोत होने के नाते पूरी तरह से स्वराट और स्वतंत्र है। और जब कृष्ण भोग करना चाहते हैं तो अपने भीतर से अपनी अंतरंगा शक्ति, अलादिनी शक्ति को प्रकट करते हैं जो उन्हें आनंद देती है। और ये बात केवल वही समझ सकता है जो आध्यात्मिक रूप से इसको समझने का प्रयास करे, अन्यथा भौतिक रूप से यदि कोई सब चीजों को समझने का प्रयास करेगा तो मात खा जाएगा। तो भगवान हालांकि पूर्ण तरह से स्वतंत्र है, फिर भी अपने भक्तों के द्वारा प्रदान गई की गई सेवा से प्रसन्न होते हैं। और श्रीमती राधा रानी जो है वो भगवान की शुद्ध भक्ता है, वे शुद्ध भक्ति का अवतार है, वे मदन मोहिनी है। और इसीलिए जिस प्रकार से राधा रानी जो है वो भगवान श्री कृष्ण की सेवा करती है और उनको परम आनंद प्रदान करती है, और कृष्ण अपने आप में आत्माराम आप्तकाम होने के बावजूद श्रीमती राधा रानी का संग स्वीकार करके और उनके साथ परम आनंद की अनुभूति करते हैं। और आश्चर्य की बात तो ये है कि ये जो राधा रानी है ये हालांकि भगवान की शक्ति है लेकिन भगवान को भी मोहित करती है। हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और यदि ये सब हमको समझना है तो हमको आध्यात्मिकता से जुड़ना होगा और एक आध्यात्मिक गुरु की शरण में जाना होगा। जैसे भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, तद विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया, कि गुरु जो है वही हमको इन सब चीजों के बारे में प्रशिक्षित कर सकते हैं और वे हमारी भौतिक चेतना के बंधन से मुक्ति करा सकते हैं। और वे धीरे धीरे अपने शिष्यों को भगवान के शुद्ध प्रेम में विकसित कर सकते हैं। और भगवान के इस भाव को और इन लीला को हम केवल गुरु के माध्यम से समझ सकते हैं। और आधुनिक युग में पूर्णता के लिए जो सबसे अच्छा जो प्रक्रिया दी गई है, जो पद्धति दी गई है, वह है हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्रील प्रभुपाद जी कई बार श्रीमती राधा रानी के आविर्भाव दिवस पर राधा अष्टमी पे क्लास दिए हैं और ऐसे कुछ 4-5 क्लास अवेलेबल है। और हर एक क्लास के अंदर श्रील प्रभुपाद जी ने ज्यादातर भगवान श्री कृष्ण के गुणों के बारे में ही बताया है, उनके ऐश्वर्य के बारे में बताया है। जैसे मैं कई भक्तों की क्लास सुन रहा था और प्रभुपाद जी की उस क्लास में, प्रभुपाद जी 25 मिनट की वो क्लास देते हैं और उसमें से लगभग 24 मिनट केवल कृष्ण के बारे में चर्चा करते हैं और बताते हैं कि किस प्रकार से कृष्ण जो है वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, किस प्रकार से कृष्ण जो है वो पूरे धनवान, शक्तिवान, बुद्धिमान, यशवान और गुणवान और भाग्यवान है, और इस प्रकार से किस प्रकार से कृष्ण जो है वो परम नियंता है उसके बारे में बताते हैं। और अंत में केवल एक लाइन में राधा रानी के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि वो भगवान, वो जो शक्तिमान भगवान है, उनकी शक्ति राधा रानी है, वे जो धनवान भगवान है उनका धन राधा रानी है, और वो राधा रानी जो है कृष्ण उनसे प्रेम करते हैं और वे कृष्ण को भी नियंत्रित करती है। सो प्रभुपाद जी कहते हैं कि राधा रानी हरि प्रिया है, वह कृष्ण को बहुत प्रिय है, और इसीलिए हम राधा रानी के माध्यम से श्री कृष्ण के पास जाने का प्रयास करेंगे तो ये बहुत आसान हो जाएगा, नहीं तो बहुत मुश्किल बात हो जाएगी। इसीलिए प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि वृंदावन में सारे भक्त जो होते हैं वो श्रीमती राधा रानी के आश्रित है, वे हमेशा राधे राधे और उस प्रकार से राधा रानी को बुलाते रहते हैं, क्योंकि राधा जो है वो बहुत ही भगवान की परम भक्ता है। और यदि राधा रानी किसी को भगवान के पास रिकमेंड करे तो भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। और राधा रानी की दया जो है वो सच्चे भक्तों के लिए आसानी से प्राप्त होती है, क्योंकि वे माँ है और बहुत ही करुणामयी है, कृपामयी है, कृपामयी राधा, करुणामयी राधा। तो राधा रानी जो है वह और भगवान उन दोनों में कोई भेद नहीं है, एक ही वस्तु है। एक सेवक भगवान है और एक सेव्य भगवान है, अर्थात कृष्ण जो है वो सेव्य भगवान है और राधा रानी जो है वो सेवक भगवान है। कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड एंजॉयर एंड राधा रानी सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड सर्वेटर। सो राधा कृष्ण में कोई भेद नहीं है। राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देहधारी, अन्यो अन्य विलास रस आस्वादन करी। शास्त्र बताते हैं कि राधा और कृष्ण जो है वो एक ही है, एक आत्मा, लेकिन उन्होंने दो शरीर धारण किए हैं, क्योंकि रस का आस्वादन करने के लिए वे एक से दो बने हैं। राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नहीं शास्त्रेर प्रमाण। तो कहते हैं कि राधा जो है वो पूर्ण शक्ति है और कृष्ण जो है वो पूर्ण शक्तिमान है। वन इज द एनर्जेटिक एंड वन इज द एनर्जी। हाँ, एक शक्ति है एक शक्तिमान है, दोनों में कोई भेद नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए कि सूर्य जो है और सूर्य की किरणें जो है वह एक ही है, दोनों में एक प्रकार से कोई भेद नहीं है और एक प्रकार से भेद किया भी जा सकता है। तो श्रीमती राधा रानी जो है वो कृष्ण की परम नियंता है, वो उनकी सेवा करके उनको नियंत्रित करती है, वो दोनों एक ही है और श्रीमती राधा रानी और कृष्ण को अलग नहीं किया जा सकता है। जिस प्रकार से दूध से धवलता, चांद से चांदनी को, अग्नि से उष्मा को और पुष्प से गंध को दूर नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार राधा और कृष्ण को एक दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता, एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, वे एक ही है। हाँ, वे लिखते हैं दैट इंडीड दे आर सेम जस्ट एज द मस्क एंड इट्स सेंट्स आर इनसेपरेबल, एज द फायर एंड हीट आर नॉन डिफरेंट, दे आर वन एंड द सेम। कृष्ण माई कृष्ण जारे भीतर बाहिरे, जहां जहां नेत्र पड़े तहां कृष्ण स्फूरे। राधा रानी की तो इतनी शक्ति है कि जहां जहां वो अपना नजर डालती है वहां वहां पर कृष्ण प्रकट हो जाते हैं। प्रेम सरोवर प्रेम की भरी रहे दिन रैन, जहां जहां प्यारी पांव धरे श्याम धरे दो नैन। भगवान जो है वो अपने अपने भक्तों से, अपने प्रेमी से इतना प्रेम करते हैं। भगवान कहते हैं अपने भक्तों के बारे में कि जहां जहां मेरे भक्त पांव धरे वहां धरू मैं हाथ, आगे पीछे डोलू उनके कभी ना छोड़ू साथ। भगवान कृष्ण जो है अपने भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ते हैं, और जहां जहां भक्त पांव रखने की कोशिश करते हैं भगवान श्री कृष्ण वहां वहां अपना हाथ रखते हैं। तो एक बार सूरदास जी, जो भगवान के इतने परम भक्त थे, वो एक बार एक किसी गड्ढे में गिर जाते हैं और कृष्ण का नाम पुकारते हैं, कृष्ण के लिए बुलाते हैं। तो कोई भी जीव यदि अपने अंतह मन से कृष्ण को पुकारेगा तो कृष्ण जरूर प्रकट हो जाएंगे। जिस प्रकार से द्रौपदी ने कृष्ण को पुकारा था, जिस प्रकार से गजेंद्र ने कृष्ण को पुकारा था, जिस प्रकार से प्रहलाद ने कृष्ण को पुकारा था और कृष्ण प्रकट हो गए थे, तो उसी प्रकार से कृष्ण वहां पर आए एक छोटे से बालक के रूप में और उन्होंने तुरंत सूरदास जी का हाथ पकड़ा और उनको बाहर निकालने लगे। लेकिन जैसे ही सूरदास जी का हाथ कृष्ण ने छुआ, सूरदास जी को आभास हो गया कि ये मेरे स्वामी कृष्ण ही है, और वो उनका हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहे थे लेकिन अंधे थे। कृष्ण ने बड़ी चतुराई से अपना हाथ छुड़ा लिया और वो वहां से जाने लगे। और तब सूरदास जी ने कहा, हाथ छुड़ावत जात हो निर्बल जानी मोय, हृदय से जब जाओ तो सबल जानूंगो तो, सबल जानूंगो तो। तो कहने लगे कि हे कृष्ण, तुम मेरा हाथ छुड़ा कर जा रहे हो क्योंकि मैं कमजोर हूं, लेकिन मेरे हृदय से जाके दिखाओ, मेरे हृदय को छोड़ के दिखाओ, तब मैं तुमको जानूंगा। तो इस प्रकार से कृष्ण और कृष्ण के भक्तों के बीच में इस प्रकार से प्रेम का उन्माद और आदान प्रदान होता है कि कृष्ण अपने भक्तों के प्रेम के वशीभूत हो जाते हैं। जब सुदामा भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए द्वारिका में आया तो सुदामा की हालत बहुत खराब थी, बहुत ही क्षीण शरीर था उसका। कृष्ण उसको आलिंगन करना चाहते थे लेकिन आलिंगन जोर से कर न सके क्योंकि कृष्ण को लगा कहीं मर ना जाइए। शरीर के अंदर बिल्कुल कुछ उसके रहा नहीं था, कृष्ण ने सुदामा को अपनी गोद में उठा के और ला के अपने पलंग पे बिठाया और रुक्मणी सत्यभामा समेत सभी रानियों को कहा कि जाओ अभिषेक की तैयारी करो और थाल परात और पानी लेके आओ, मैं सुदामा का पाद प्रक्षालन करूंगा। और वे सुदामा का पाद प्रक्षालन करने के लिए जब उन्होंने सुदामा के पैरों को हाथ लगाया तो सुदामा के पैरों में कांटे लगे हुए थे और सुदामा की इस प्रकार से दीन दशा को देखकर भगवान श्री कृष्ण के आंखों से झर 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 आंसू बहने लगे। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए और पानी परात के हाथ छुओ नहीं नयनन से उसके पग धोए। तो भगवान ने वो पानी परात मंगाई लेकिन उससे वो उन्होंने उसके पैर नहीं धोए और केवल अपने आंसुओं से सुदामा के पैर धोए। इस प्रकार से भक्त के साथ भगवान जो है वो प्रेम करते हैं और राधा रानी जो है वो तो सर्वोच्च भक्त है, हाँ वो सर्वोच्च आनंद प्रदान करती है। इस प्रकार से कहा जाता है कि गोविंद नंदिनी राधा गोविंद मोहिनी गोविंद सर्वस्व सर्व कांता शिरोमणी गोविंद सर्वस्व सर्व कांता शिरोमणी। तो ये जो है राधा रानी ये क्या करती है, गोविंद को आनंद देती है हाँ और गोविंद को मोहित कर लेती है। वे कृष्ण जो कि मदन अर्थात कामदेव को मोहित कर लेते हैं लेकिन वे राधा रानी वे कृष्ण को मोहित कर लेती है, इसलिए मदन मोहन मोहिनी कहलाती है। पूरी दुनिया जो है वो कृष्ण के पीछे भागती है लेकिन कृष्ण जो है वो राधा रानी के पीछे भागते हैं। हाँ भगवान श्री कृष्ण के पैरों को प्राप्त करने के लिए कितने सारे लोगों ने क्या क्या नहीं किया, भक्ति विनोद ठाकुर इसका वर्णन करते हैं और कहते हैं कि जे पद लागिया रमा तपस्या करिया जे पद लागिया शिवा शिवत्व लभिया जे पद लागिया ब्रह्मा कृतार्थ होइया से पद नारद मुनि हृदय धरिया। तो कहते हैं कि जिस पैरों की तपस्या करके लक्ष्मी जो थी उन्होंने हजारों साल तक तपस्या की उनको प्राप्त करने के लिए और जिन पैरों का ध्यान करके शिवजी को अपना शिवत्व प्राप्त हुआ है उन पैरों को ब्रह्मा जी जो है दिन रात उसकी कामना करते रहते हैं और उनका ध्यान करते हैं और उस पैर को नारद मुनि जो है वो अपने हृदय में धारण करते हैं। लेकिन वही कृष्ण क्या करते हैं, अपने प्रेमी भक्तों के और पर्टिकुलरली जो राधा रानी है उसके पीछे पीछे डोलते हैं। राधा कृष्ण ऐछे सदा एक ही स्वरूप लीला रस आस्वादिते धरे दोई रूप। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि राधा कृष्ण ऐछे सदा एक ही स्वरूप, कि वो हमेशा एक ही स्वरूप है राधा कृष्ण का, वे भिन्न नहीं है, वे अभिन्न है, वे एक ही है। लेकिन क्या करते हैं, वन का टू होता है क्योंकि लीला रस आस्वादिते धरी दोई रूप, वो लीला और रस का आस्वादन करने के लिए दो रूप में रूपांतरित हो जाते हैं। कृष्ण आत्मा राम है, कृष्ण आप्त काम है, उनको किसी चीज की जरूरत नहीं है। लेकिन हमको समझना चाहिए कि सिद्धांत है और लीला है। सिद्धांत की दृष्टि से कृष्ण जो है वो ईश्वर है, आत्माराम है, आप्त काम है, उनको किसी चीज की जरूरत नहीं है, कोई चीज की उनको आवश्यकता नहीं है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णातम पूर्णमुदच्यते। लेकिन लीला की दृष्टि से बात की जाए तो कृष्ण को भी रसास्वादन करने के लिए अपने भक्तों की आवश्यकता होती है और तब वे राधा रानी को अपने हृदय में से प्रकट करते हैं। हाँ जैसे देखा जाए तो एक राष्ट्रपति को किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, अगर उसको भोजन करना है तो बहुत सारे नौकर भोजन बनाने के लिए रेडी है। हाँ लेकिन लीला आस्वादन करने के लिए वो राष्ट्रपति क्या करते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, हाँ मेरी पत्नी या मेरी पुत्र वधु जो है वो मेरे लिए भोजन बनाएगी और उनका वो आस्वादन करते हैं। इसीलिए कृष्ण के पास आनंद लेने की शक्ति तो असीमित है लेकिन वो क्या करते हैं, श्रीमती राधा रानी के साथ आदान प्रदान करते हैं और उस आनंद का असीम आनंद को प्राप्त करते हैं। और वह व्यक्ति जो कृष्ण को असीम आनंद प्रदान करती है वह श्रीमती राधा रानी है। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि कृष्ण की प्रसन्नता की शक्ति स्वयं कृष्ण को अभिभूत करती है, अर्थात राधा रानी भगवान कृष्ण का ही स्वरूप है, कृष्ण से ही प्रकटा है, लेकिन फिर भी कृष्ण को इतना अभिभूत करती है कि कई बार कृष्ण समझ नहीं पाते हैं राधा के प्रेम को, और कृष्ण कहते हैं कृष्ण वांछा प्रूति रूपे करे आराधने अत एव राधिका नाम पुराणे वखाने। कृष्ण को नियंत्रित करने की शक्ति जो है वो केवल श्रीमती राधा रानी में है। वे राधा रानी जो है वो महाभाव स्वरूपिणी है, वो कृष्ण को नियंत्रित कर लेती है। सिद्धांत के रूप से देखा जाए तो कृष्ण परम नियंता है, सिद्धांत की दृष्टि से देखा जाए तो कृष्ण जो है वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, सिद्धांत की दृष्टि से देखा जाए तो कृष्ण जो है वो अभिज्ञ स्वराट है, लेकिन लीला की दृष्टि से देखा जाए तो श्रीमती राधा रानी परम नियंता है। लीला की दृष्टि से देखा जाए तो श्रीमती राधा रानी जो है वो अभिज्ञ स्वराट को भी जो है वो अपने नियंत्रण में ला देती है। यह राधा रानी है और यह है उनकी महानता। जगत मोहन कृष्ण तहर मोहिनी अत एव समस्त पर ठकुरानी। कृष्ण कहते हैं कि मैं राधा रानी के प्रेम को समझ नहीं पाता, किस प्रकार से मैं राधा रानी के प्रेम को समझूं, क्योंकि जैसे चीनी अगर सोचे कि मुझ में कितना स्वाद है मैं कैसे समझ सकता हूं, तो चीनी उसको समझ नहीं सकती। हाँ, एक गाय के पास दूध होता है लेकिन उसका आस्वादन खुद गाय नहीं कर सकती, बछड़ा करता है। कमल के अंदर अमृत है लेकिन कमल उस अमृत का पान खुद नहीं कर सकता है, भौरा उस कमल का अमृत का पान करता है। तो कृष्ण कहते हैं पूर्णानंद आमी चिन्मय पूर्ण तत्व राधिकार प्रेम अमार कराए उन्मत। तो कहते हैं कि राधा रानी के प्रेम से मैं उन्मत हो जाता हूँ, क्योंकि उसका प्रेम जो है वो दिन ब दिन बढ़ते जाता है। ना जानी राधार प्रेम आछे कोथा बल ये बले अमार करे सर्वदा विवल। कृष्ण कहते हैं कि मैं राधा रानी के प्रेम में इतना विवल हो जाता हूँ और मुझे समझ में नहीं आता है, मैं एक नट के भांति हूँ और राधा रानी जो है वो मेरी नियंता है, वो जिस प्रकार से मुझे नचाना चाहती है मैं उस प्रकार से नाचने के लिए उद्यत रहता हूँ। कृष्ण कहते हैं कि राधिकार प्रेम गुरु आमी शिष्य नट सदा आमना नृत्य नचाए उद्भव। तो बोलते हैं कि राधा रानी जो है वो मेरी गुरु है और मैं एक काष्ट की पुतली हूँ उनके हाथ में और उनका शिष्य हूँ, जैसे वो मुझे नचाना चाहती है मैं नाचता हूँ। कृष्ण जो है अपने भक्तों से इतना प्रेम करते हैं क्योंकि भक्त उनसे इतना प्रेम करते हैं। जब कृष्ण को सर दुखने की जब उन्होंने लीला की थी तो किसी ने कृष्ण को वो दवाई नहीं दी जो कृष्ण चाहते थे, उनको भक्तों की चरण धूली चाहिए थी और वे भक्त जो चरण धूली जो थी वो गोपियां रगड़ रगड़ कर और नारद मुनि को दे दी, और नारद मुनि ने कहा कि अरे तुम्हें पता नहीं है कि इस प्रकार से तुम अगर कार्य करोगी तो नरक में जाओगी। उन्होंने कहा कि अगर हमारे प्रियतम को एक क्षण भी आनंद का अनुभव हो और उसके लिए अगर हमको नरक में जाना पड़े तो हम नरक में जाने के लिए सदैव तैयार है, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे को। तो उसी प्रकार से गोपियां जो है कृष्ण को इस प्रकार से नचाती है। तो कहते हैं कि शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश ही जाई निरंतर गावे और जाही अनादि अनंत अभेद अचेत सब वेद बतावे और नारद से शुक व्यास रटे पछी पाहु तरी पुनि पार न पावे और ताहे अहिर की गोपिया छछियावर छाछ पे नाच न जावे। तो बोलते हैं कि वो भगवान श्री कृष्ण जिनकी आराधना कौन करते हैं, शेष अर्थात शेषनाग, महेश अर्थात शिवजी, दिनेश अर्थात सूर्य, शेष महेश दिनेश गणेश अर्थात गणेश जी, इंद्र चंद्र वायु वरुण ये सब जो है वो उनकी स्तुति करते रहते हैं, जो आदि है अनंत है, जो अखंड है अभेद है जिनका भेद कोई जान नहीं सकता, जो अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च, और जिनकी स्तुति करते करते सुखदेव गोस्वामी से व्यास देव से नारद मुनि तक थकते नहीं है। वे कृष्ण को गोपियां क्या करती है, वो वृंदावन की छोरियां छछिया पर छाछ पे नाच नचाए, थोड़ी सी छाछ के लिए नचा देते हैं। क्यों? क्योंकि वे सारे की सारी कृष्ण की बेस्ट डिवोटी है, वे सब कृष्ण की परम भक्ता है। और कृष्ण कहते हैं कि उन सभी परम भक्ताओं में सबसे श्रेष्ठ जो है वह है श्रीमती राधा रानी। सेई गोपी गण मध्य उत्तम राधिका रूपे गुण सौभाग्ये प्रेमे सर्वाधिका। कृष्ण कहते हैं कि वे सही गोपीगण मध्य उत्तम राधिका। हाँ, क्यों? क्योंकि श्रीमती राधा रानी जो है वो कृष्ण को जानती है, वो कृष्ण को क्या चाहिए वो जानती है और उनको उसी प्रकार से सेवा करती है। इसीलिए कृष्ण जब रासलीला की लीला कर रहे थे तो एक बार सभी गोपियों को छोड़ दिए लेकिन केवल श्रीमती राधा रानी को लेके गए, और इसका वर्णन श्रीमद् भागवतम में आता है। तो कहते हैं कि राधा रानी का कार्य क्या है। अगर कोई सोचे कि राधा रानी की कृपा मुझे किस प्रकार से प्राप्त हो सकती है या मुझे कैसे पता चलेगा कि राधा रानी की कृपा मुझे प्राप्त हुई है, तो कहते हैं कि राधा रानी जो है वो केवल भगवान को आनंद नहीं देती है, वो भक्तों का पोषण भी करती है। हाँ, कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि राधा रानी जो है वो दो कार्य करती है, भगवान श्री कृष्ण को आनंद देती है और अपने भक्तों का पोषण भी करती है। और यदि भक्त श्रीमती राधा रानी के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की ओर पहुंचने का प्रयास करेंगे तो बहुत ही सुगमता से पहुंचेंगे। लादिनी कराए कृष्णेर आनंद आस्वादन, अलादिनीर द्वारा करे भक्तेर पोषण। तो कहते हैं कि लादिनी भगवान की अंतरंगा शक्ति जो है वो कराए कृष्णेर आनंद आस्वादन, वो कृष्ण को आनंद का आस्वादन कराती है। शी गिव्स प्लेजर टू कृष्णा एंड लादिनी द्वारा करे भक्तेर पोषण, वो भक्तों का भी पोषण करती है। हाँ, शी प्रोटेक्ट्स डिवोटीज, शी रिकमेंड्स डिवोटीज टू कृष्णा, शी इंस्ट्रक्ट्स डिवोटीज, शी इंस्पायर्स डिवोटीज एंड शी डज सॉल्वेशन फॉर द डिवोटीज। सो ये जो राधा रानी है ये श्री राधे वृंदावनेश्वरी है। इसीलिए कहा है कि तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृष भानु सुते देवी प्रणमामी हरि प्रिय। इसीलिए सारे भक्त जो है पर्टिकुलरली गौड़ीय वैष्णव जो है वो श्रीमती राधा रानी को चाहते हैं और राधा रानी की सेवा करते हैं। और हमको ये विचार करना चाहिए कि कौन वो व्यक्तित्व है जो राधा रानी की पूजा करता है। हाँ, कौन राधा रानी? राधा रानी का प्रेम प्राप्त करने के लिए, राधा रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए, हाँ, उद्धव जी जिनको कृष्ण ने वृंदावन में भेजा था गोपियों को समझाने के लिए, गोपियों को पाठ पढ़ाने के लिए, लेकिन उल्टा उद्धव जी खुद पाठ पढ़कर वहां पर आए। और जब उन्होंने गोपियों का प्रेम देखा कृष्ण के प्रति, तो वो प्रेम देखने के बाद उद्धव जी ऐसा विचार करने लगे कि कब मैं इन गोपियों के चरण रज को अपने सिर पर धारण कर पाऊंगा। और फिर उन्होंने सोचा कि इस जन्म में तो मैं गोपियों की जो चरण रज है उसको अपने सर पे नहीं ले सकता, तो इसलिए ऐसी प्रार्थना करता हूं कि मैं अपना ये मनुष्य शरीर त्याग कर और एक घास बन जाऊं वृंदावन में, एक तृण बन जाऊं, और जब गोपिया निकलेगी और मेरे सर पे अपना पैर रख के जाएगी तब मुझे वो मिल जाएगा। तो सोचो उद्धव जी जो है वो राधा रानी की कृपा और गोपियों की कृपा प्राप्त करने के लिए अपनी योनि बदल सकते हैं। उन्होंने कहा कि मनुष्य योनि से मैं घास में जाने के लिए तैयार हूं, और दो व्यक्ति शिवजी और नारद जी वो अपना लिंग परिवर्तित करने के लिए भी तैयार है। शिवजी रासलीला में प्रकट होने के लिए गोपेश्वर महादेव के रूप में गोपी बन गए, और नारद जो थे वो नारदीय गोपी बन गई। हाँ, वैसे ही अर्जुन अर्जुनिया गोपी बन गई। ये सारे व्यक्तित्व जो है इतने महान, हाँ, शिवजी कौन है, नारद मुनि कौन है, हम जानते हैं कि नारद मुनि और शिवजी का क्या स्थान है। वे अपना लिंग परिवर्तन करने के लिए भी रेडी है, और नारद से नारदी बनने के लिए या शिवजी से गोपीश्वर महादेव बनने के लिए पीछे नहीं हटे। और ब्रह्मा जी तो राधा रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए, हाँ, वे तो स्पिरिट से मैटर बनने के लिए तैयार है। वे एक पर्वत बनने के लिए बरसाना में तैयार हो गए, और बरसाना में जो ये चार पहाड़ है, चार पर्वत है, दानगढ़, मानगढ़, भानगढ़ और विलासगढ़, ये क्या है? ये ब्रह्मा जी के चार सिर है। हाँ, ब्रह्माचल पर्वत मन भायो, ब्रह्मा जी वहां पर जाके पर्वत बन गए। हाँ, शिवजी भी नंदीश्वर पर्वत के रूप में प्रकट हो गए, और भगवान स्वयं श्री कृष्ण जो है वो गोवर्धन के रूप में, पत्थर के रूप में परिवर्तित हो गए इन सबकी कृपा प्राप्त करने के लिए, ताकि गोपियां जो है वो गोवर्धन पर्वत पे आके जब लीला करेगी तो उनके ऊपर वो लीला करेगी। तो राधा रानी को इसलिए तत्व से समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो अगर हम बिना तत्व के समझने की कोशिश करेंगे तो मात खा जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति मामेति स्वर्जुना। तो ये कहते हैं कि यो माम वेति तत्वतः, तो जब वो तत्व की बात करते हैं तो हमारे राधा गोपीनाथ प्रभु कहते हैं कि ये तत्व कौन है, ये पंच तत्व है, ये पंच तत्व है श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद। तो ये जो पंच तत्व है इनका वर्णन ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम में भी है। श्रीमद् भागवतम को पंचम वेद कहा गया है और श्रीमद् भागवतम के में इस श्लोक का उद्धृत है, इसका वर्णन है, कृष्ण वर्णम तिशा कृष्णम संगो पांगास्त पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय जयंती ही सुमेधस, कि ये जो श्री चैतन्य महाप्रभु अपने पार्षदों के साथ कलयुग के अंदर आते हैं और श्री हरिनाम संकीर्तन का प्रचार करते हैं और हर युग में जब कृष्ण आते हैं यदा यदा ही धर्मस्य तो क्या करते हैं परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, वो अपने अस्त्र शस्त्र लेके आते हैं और दुष्टों का विनाश करते हैं। लेकिन कलयुग के अंदर जब श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में कृष्ण अवतरित होते हैं तो वे कोई अस्त्र शस्त्र नहीं लेके आते हैं, लेकिन उनके अस्त्र शस्त्र उनके अपने पार्षद है, उनके अपने एसोसिएट्स है, उनके अपने मित्र है, उनके भक्त हैं और वे आते हैं और उनके माध्यम से वो हरिनाम संकीर्तन का प्रचार करते हैं और दुष्टों का विनाश नहीं करते। लेकिन दुष्टों के अंदर जो दुष्ट मेंटालिटी है, जो उनके अंदर दुष्टता भरी हुई है, उसको वो खत्म कर देते हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है, वे स्वयं कृष्ण है, नित्यानंद प्रभु वे प्रकाश तत्व है और गुरु तत्व है, अद्वैत आचार्य वो ईश अवतार है ताकि जितने भी अवतार है वो उनके रूप से प्रकट होते हैं, और गदाधर पंडित जो है वो भगवान की अंतरंगा शक्ति श्रीमती राधा रानी का प्रतीक है, और शिवास पंडित जो है शिवास ठाकुर जो है वे नारद मुनि है या जीव तत्व है इस पंच तत्व में। तो पंच तत्व के माध्यम से यदि कोई राधा कृष्ण को समझने का प्रयास करेगा तो बहुत ही सुगम रूप से, सुरक्षित रूप से और तत्व से आसानी से उसको समझ पाएगा, अन्यथा वो बहुत डिफिकल्ट होगा। और भगवान श्री कृष्ण ने जो रासलीला की गोपियों के साथ में, वही रासलीला कलयुग के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने हरिनाम संकीर्तन के रूप में प्रकट की। हमारा एक वैष्णव सॉन्ग बुक के ऊपर एक बहुत अच्छा पोस्टर है जिसपे ऊपर के साइड में राधा कृष्ण और सखियों के साथ में रासलीला का वर्णन का फोटो है और उसके नीचे श्री चैतन्य महाप्रभु पंच तत्व के साथ और अपने भक्तों के साथ हरिनाम संकीर्तन करते नजर आ रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ये हरिनाम संकीर्तन जो है ये कलयुग का एक प्रोसेस है, पद्धति है, और इस प्रकार से हम जब हरिनाम संकीर्तन करते हैं तब हम कृष्ण के सबसे अंतरंग लीला तक पहुंच सकते हैं और व्यवहारिक रूप से इस लीला में भाग भी ले सकते हैं। यू नो हमारे पास अनुभव है कि कोई व्यक्ति पहली बार जब हरिनाम संकीर्तन के अंदर आता है, जैसे कोई हरिनाम संकीर्तन पार्टी कीर्तन कर रही है और कभी हम देखते हैं कि रोड पे कोई व्यक्ति बिल्कुल अंदर घुस जाता है और घुस के और इतना उन्माद होके और वो कीर्तन करने लगता है, किबा मंत्र दिला गोसाई किबा तारबल जपिते जपिते मंत्र होइला पागल। कई बार वो जब करते करते भक्तों के साथ में, क्योंकि जब भगवान के प्रेमी और उच्च बड़े चढ़े वरिष्ठ भक्त जब प्रेम से भगवान का कीर्तन करते हैं तो उस ध्वनि का जो असर होता है हृदय पे, कर्ण रंध्रों के माध्यम से हृदय पूरा आप्लावित हो जाता है और कृष्ण का प्रेम जो है वो स्फुरित हो जाता है और व्यक्ति उसके अंदर नाचने लगता है। और कई बार नाचने के बाद जब बाहर आता है तो सोचता है कि अरे मैंने ये क्या किया, मैं तो बड़ा ही शांत व्यक्ति हूँ, मैं तो बड़ा ही बुद्धिमान व्यक्ति हूँ, मेरे साथ ऐसा क्या हुआ, मैं कैसे पागल के जैसा नृत्य करने लगा। लेकिन उसे समझ में आता है कि ये जो कृष्ण का ये जो सृष्टि है, चैतन्य सृष्टि है, प्रेम संकीर्तन, कि जिस प्रकार से वो कीर्तन होता है भगवान का, कोई भी उसमें उन्मत्त हो जाता है। जब मीराबाई भगवान श्री कृष्ण का भजन गाती थी, कीर्तन करती थी, तो सारा का सारा गांव उनके पीछे पीछे चलने लग जाता था। जब महाराष्ट्र के संत तुकाराम जब वो कीर्तन करते थे, हरिनाम संकीर्तन करते थे, तो पूरा का पूरा गांव उनके पीछे चल जाता था और उन्हें पता भी नहीं रहता था, कोई सूद नहीं रहती थी। गोड़ तुझे रूप गोड़ तुझे नाव, गोड़ तुझे रूप गोड़ तुझे नाव, सारे के सारे लोग उनके पीछे पीछे चलते जाते थे। और श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु जब नवदीप में थे तब जगाई मधाई नाम के दो खतरनाक गुंडे, जिन्होंने हर प्रकार से हर कोई पाप किया था, जो बिल्कुल शराब के नशे में धूत रहते थे, वैसे लोगों को जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी कृपा दी, नित्यानंद प्रभु ने जब उनको कृपा दी, हालांकि उन्होंने नित्यानंद प्रभु पे प्रहार किया था, उनको मारा था, लेकिन नित्यानंद प्रभु और श्री चैतन्य महाप्रभु इतने उदार है तो कहते हैं कि दयाल तो नहीं है, दयाल तो नहीं है, मार खे प्रेम दे, दयाल तो नहीं है। तो उन्होंने अपनी दया दी और उसके बाद जगाई और मधाई में ऐसा परिवर्तन आया कि वे प्रेम के उन्माद में मत्त हो गए और पागल होके उर्ध्व हस्त करके जोर जोर से चिल्ला के कहते थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इतने बड़े भक्त बन गए। शिला प्रभुपाद जी जब भारत से अमेरिका गए, अमेरिका में किसी को कृष्ण के बारे में कुछ पता नहीं था, भगवान के बारे में भी वे कुछ जानते नहीं थे, लेकिन शिला प्रभुपाद जी वृंदावन से अपने हृदय में वृंदावन को धारण करते हुए और अमेरिका में गए और ही कन्वर्टेड हिप्पीज इंटू हैप्पीज। हाँ, जितने हिप्पी लोग थे उनको उन्होंने हैप्पी बना दिया। उनके बलिदान, करुणा और प्रेम के कारण आज पूरी दुनिया के अंदर हर कॉन्टिनेंट में अलग अलग समय अलग अलग स्थान पे हर कोई राधा अष्टमी का महामहोत्सव मना रहा है। सोचो किसी दुनिया के किसी स्थान में इस समय अगर मंगल आरती हो रही है तो दूसरे समय वैकालिका आरती हो रही है, किसी समय राजभोग आरती हो रही है, और कभी भागवतम क्लास चल रहा है तो कहीं कीर्तन चल रहा है, कहीं बुक डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। ये श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से उन्होंने राधा कृष्ण के तत्व को पूरे संसार को समझाया और इस प्रकार से पंच तत्व के माध्यम से राधा और कृष्ण के अंतरंग लीला को देखना बहुत आसान और बहुत सुरक्षित है। हम कोई मात नहीं खाएंगे इसके अंदर। तो कृष्ण जो है ये कई बार राधा के प्रेम को और भक्तों के प्रेम को समझ नहीं पाते हैं। तो एक बहुत ही अच्छा श्लोक है, करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनियेशयंतम वटस्य पत्रस्य पुटे सयानम बालम मुकुंदम मनसास्मरामि। जब भगवान भक्त के प्रेम में उन्मत्त हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं, तो भगवान को भी समझ में नहीं आता है कि ऐसा क्या है मुझमें कि जो इस प्रकार से जो भक्त लोग हैं वो मेरे प्रेम में उन्मत्त होते हैं, और ऐसा क्या है कि श्रीमती राधा रानी मेरे प्रेम को में इस प्रकार से उन्मत्त रहती है। तो करार विंदे, तो भगवान यहाँ पे मार्कंडेय ऋषि ये दृश्य देख रहे हैं कि पूरा का पूरा जो प्रलय हो गया है और उस प्रलय के अंदर इतना पानी बह रहा है और उसमें से एक बरगद के एक पत्ते के ऊपर भगवान श्री कृष्ण चारों दिशाओं को धारण करके और एक नन्हे से शिशु के रूप में क्या कर रहे हैं, करार विंदे अपने हाथ से, कर मतलब हाथ, अपने हाथ से पदार विंदे अपने पैरों को पकड़े हैं और पैरों को पकड़कर क्या कर रहे हैं, अपने अंगूठे को मुखार विंदम, करार विंदे पदार विंदम मुखार विंदे अपने मुख में डाल रहे हैं और विनिवेश यंतम अपने पैरों की उंगलियों को चूस रहे हैं। क्यों क्यों कृष्ण अपने पैरों का अंगूठा चूस रहे हैं, क्योंकि वे जानना चाहते हैं कि अरे इस मेरे पैर के अंगूठे में, मेरे पैर में ऐसा क्या है कि सारे के सारे भक्त वहीं लटके हुए हैं, सारे के सारे भक्त वहीं निवास कर रहे हैं, क्या खास बात है कि सब लोग वहीं पर रहना चाहते हैं। और कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृश विचिन्तय, कि जो है वो हम भगवान श्री कृष्ण के पैरों में, उनके पैरों की क्या महिमा है। तो कृष्ण खुद अपने पैरों की महिमा को पकड़कर और चाटने का प्रयास कर रहे हैं और देख रहे हैं कि इसके अंदर कितना रस है, कि उस रस को आस्वादन करने के लिए राधा रानी गोपिया ब्रज परिकर और जितने के सारे जो भक्त है वो मेरे पैरों के पीछे पड़े हुए हैं। तो हमको समझना चाहिए कि भगवान के इस प्रकार की लीलाओं को समझने के लिए हमको ये दो ट्रैक की आवश्यकता है। हमारी अगर ट्रेन को दौड़ाना है तो हमारे पास गुरु ट्रैक और कृष्ण ट्रैक दोनों होना चाहिए। केवल अगर गुरु को धारण करेंगे तो मायावादी हो जाएंगे और केवल कृष्ण को पकड़ेंगे तो सहजिया हो जाएंगे। इसीलिए हमको समझना चाहिए कि श्री चैतन्य महाप्रभु का भूरी भूरी धन्यवाद देना चाहिए कि जो आके अचिंत्य भेदाभेद तत्व से हमको ये बताए हैं कि किस प्रकार से कृष्ण की भक्ति की जाए, क्योंकि कृष्ण जो है वही भक्त बन के और हमको अपने आचरण से बता सकते हैं कि भक्ति कैसे की जाए, और वह श्री चैतन्य महाप्रभु ने किया है। इसके लिए ये जो है राधा गोपीनाथ प्रभु कहते हैं कि यह अनुस्मरणीय है, यह अनुसरणीय भी नहीं है और डेफिनेटली अनुकरणीय तो नहीं है। अनुकरणीय का मतलब होता है इमिटेट करना और अनुसरणीय होता है कि उसकी तरह से उसको फॉलो करना, लेकिन अनुस्मरणीय मतलब ऐसा है कि ना हम उसको इमिटेट कर सकते हैं और ना ही हम उसको फॉलो करने का प्रयास कर सकते हैं, हमको केवल अनुस्मरण करना है। और अगर हम अनुस्मरण करेंगे और स्मरण के रूप में जब हम श्री राधा और कृष्ण को समझने की कोशिश करेंगे तो हम बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे, क्योंकि कृष्ण भी जो है वो हर समय राधा और गोपियों का स्मरण करते रहते हैं। हाँ, बृहद भागवत में ये इस प्रकार से आता है कि द्वारका की रानियां कभी समझ नहीं पाई और उनको ऐसा लगने लगा कि हम तो केवल नाम मात्र की पत्नियां हैं। हाँ, हम तो कृष्ण के साथ यहां पर होती है, लेकिन कृष्ण जब सोते हैं तब भी वो राधा के लिए रोते हैं और वो अपने नींद में भी हे राधे हे राधे हे यशोदा हे गोपी इस प्रकार से ध्वनि करते हैं। तो उनको समझ में नहीं आता है कि कृष्ण क्यों इस प्रकार से इतना चाहते हैं, लेकिन ये समझ जो है अगर हमको समझना है कि क्यों कृष्ण भगवान जो है वो राधा रानी से इतना प्रेम करते हैं और राधा रानी कृष्ण से इतना प्रेम करती है। माखन की चोरी बारंबार करे फिर भी तो राधा रानी प्यार करे हो। तो राधा रानी जो है ये श्रीमद् भागवत में, हाँ, श्रीमद् भागवतम जो कि भगवान का एक साहित्यिक अवतार है उसमें बताया गया है। कुछ लोगों को भ्रम है कि श्रीमद् भागवतम में राधा के नाम का उल्लेख ही नहीं है, सुखदेव गोस्वामी ने कभी राधा का नाम पुकारा ही नहीं है और बताया ही नहीं है, तो ये गलत तर्क है, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी राधा रानी के निजी तोते हैं। अगर वो राधा का नाम ले लेते तो 6 महीने तक उनको मूर्छा आ जाती थी, और क्योंकि परीक्षित को भागवत सुनाना था तो इसके लिए उन्होंने डायरेक्टली राधा रानी का नाम नहीं लिया, लेकिन इनडायरेक्टली राधा का नाम लिया उन्होंने। इनडायरेक्टली रास पंचाध्याय में राधा रानी के बारे में वो बताते हैं, अनया राधिको नूनम भगवान हरिरीश्वर यन्नो विहाय गोविंद प्रीतो यामन यद्रह। और दूसरे अध्याय में जब मंगलाचरण करते हैं उस समय भी सुखदेव गोस्वामी अपनी गुरु श्रीमती राधा रानी को याद करते हुए कहते हैं, निरस्त साम्य तिशयेन राधसा। ये राधसा मतलब ये राधा रानी को उन्होंने याद किया है 2.4.14। तो जिस प्रकार से हरे मेहंदी के पत्ते में गूढ़ लालिमा छिपी हुई है, यदि आप मेहंदी का पत्ता लो हरे कलर का होता है लेकिन उसको अगर आप घसोगे और उसको सुखा के उसको अपने हाथों में लगाओगे तो क्या होगा, हाथ का रंग लाल हो जाएगा। तो जिस प्रकार से हरे मेहंदी के पत्ते में गूढ़ लालिमा छुपी हुई है उसी प्रकार से रस शास्त्र और प्रेम शास्त्र श्रीमद् भागवतम में रस और प्रेम की मूर्ति स्वरूपा श्रीमती राधा रानी उसमें छिपी हुई है, उसमें प्रकट है, और राधा का नाम श्रीमद् भागवतम में है। और क्योंकि श्रीमद् भागवतम भगवान श्री कृष्ण का अवतार है और भगवान श्री कृष्ण के हृदय में राधा रानी रहती है, इसीलिए वो श्रीमद् भागवतम के हर पन्ने में राधा रानी का वास है। शिला प्रभुपाद जी ने हमारे एक श्री विग्रह की स्थापना की जिनका नाम रखा श्री श्री राधा पार्थ सारथी। तो किसी ने पूछा राधा पार्थ सारथी, पार्थ सारथी मतलब तो अर्जुन के सारथी हुए, अर्थात कृष्ण जो कि कुरु भूमि में है, युद्ध भूमि में है, वहां तो राधा नहीं है, ये किस प्रकार का नाम हुआ। लेकिन प्रभुपाद ने समझाया कि जहां कृष्ण होते हैं वहां राधा रानी उनके साथ में रहती है, क्योंकि राधा रानी कृष्ण के हृदय में है। हा? और इसीलिए चाहे वो राधा पार्थ सारथी हो या राधा गोविंद देव जी हो या राधा मदन मोहन हो या राधा गोपीनाथ हो, राधा रानी हमेशा उनके साथ में रहती है। परम धन राधा नाम आधार। एक संत कहते हैं कि सुखदेव गोस्वामी ने इनडायरेक्टली श्रीमद् भागवतम में राधा का नाम लिया, डायरेक्टली तो राधा का नाम वो लिए नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा कि जिस कृष्ण के नाम का संकीर्तन, जिस कृष्ण के नाम का जब पूरी दुनिया करती है, वो कृष्ण किसके नाम का जप करते हैं, राधा रानी के नाम का, वे राधा के नाम का जप करते हैं। जाको श्याम मुरली मेटे रत सुमिरत बारंबार। वे कहते हैं कि जिसका नाम अपनी मुरली में बार बार मुरली जब कृष्ण बजाते हैं तो केवल एक ही ध्वनि आती है, और वे कहते हैं कि तंत्र मंत्र और वेद जंत्र में सब तारन को तार श्री सुखदेव प्रकट नहीं बाख्यो जाने सार को सार परम धन राधा नाम अपार। तो इस प्रकार से कृष्ण के हृदय में राधा रानी है। श्रील प्रभुपाद जी अपने लेक्चर में कहते हैं कि कृष्ण के हृदय में राधा रानी है और इसलिए राधा रानी जो है वो श्रीमद् भागवतम में है। और हमारे आचार्य जो है उन्होंने क्या किया है कि भागवत के इस गूढ़ रहस्य को उद्धृत किया है और उसको और लेके जैसे श्रील रूप गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम जैसे अगर खीर के समान है तो उन्होंने उस खीर को लिया है दसम स्कंद की खीर को और उसके अंदर बादाम पिस्ता काजू किशमिश सब डाल के और भक्ति रसामृत सिंधु की रचना की है जिसके अंदर केवल भक्ति और केवल भक्ति के बारे में बताया। तो जिस प्रकार से कृष्ण जो है वह श्रीमद् भागवतम या श्रीमद् भागवतम जो है वो कृष्ण का साहित्यिक अवतार है, उसी प्रकार से ये पुस्तक भक्ति रसामृत सिंधु जो है वो राधा रानी का साहित्यिक अवतार है और श्रील रूप गोस्वामी द्वारा विचरित है। नाना शास्त्र विचारणे क निपुण सद्धर्म संस्थापक लोका नाम हित कारण त्रिभुवने मन्यो शरण्या करो राधा कृष्ण पदारविंद भजना नंदेन मत्तालिक वंदे रूप सनातन रघुयुग श्री जीव गोपाल को। तो ये षड गोस्वामी ने क्या किया, नाना शास्त्र विचारेण निपुणों, वे शास्त्रों के विचार में बहुत निपुण थे और उन्होंने सद्धर्म संस्थापको ये धर्म की स्थापना की है और लोका नाम हित कारणम सभी लोगों का जन कल्याण करने के लिए उन्होंने क्या किए, उन्होंने इन ग्रंथों की रचना की है और इन सबको प्रकट किया है। क्यों, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से हम जो है वो ब्रजवासी को ब्रज प्रेम को राधा रानी को और कृष्ण को समझ सकते हैं, अन्यथा कृष्ण को समझना बहुत बहुत मुश्किल है। क्योंकि कृष्ण जो है जब अपने गोप गोपियों के साथ में जब लीला करते हैं तो पूरी तरह से बिक जाते हैं और ब्रज परिकर का जो प्रेम है वो मथुरा या द्वारका परिकर के प्रेम से थोड़ा भिन्न है। हाँ, भगवान अपना ऐश्वर्य जो है वो द्वारका में बताते हैं, अपना ऐश्वर्य मथुरा में बताते हैं, अपना ऐश्वर्य वैकुंठ में बताते हैं, लेकिन ब्रज धाम में उनका ऐश्वर्य नहीं चलता। इसलिए राधा रानी को वृंदावनेश्वरी कहा गया है। वो कहती है कि तुम्हारा ऐश्वर्य हर जगह चलेगा लेकिन ब्रज में नहीं चलेगा, ब्रज में तो केवल राधा रानी की कृपा चलती है और केवल राधा रानी का ऐश्वर्य चलता है। और जब भले ही कृष्ण गोवर्धन क्यों ना उठा ले, भले ही कृष्ण इतने सारे असुरों का वध क्यों ना कर ले, भले ही कृष्ण एकदम अलग अलग प्रकार के ऐसे बड़े बड़े कार्य क्यों ना करे, लेकिन ब्रजवासी जो है उनके प्रेम के ऊपर कोई अंतर नहीं पड़ता। उनका प्रेम जो है वो पिघले हुए घी के समान है, हाँ उसके अंदर सिक्का डालोगे तो भी उनको दिखाई देता है, नहीं वो गाढ़े घी के समान है कि भगवान श्री कृष्ण के ऐश्वर्य का सिक्का अगर उस घी में पड़ जाता है तो छुप जाता है उनका ऐश्वर्य। लेकिन जो द्वारका परिकर वैकुंठ परिकर और मथुरा परिकर है उनका प्रेम पिघले हुए घी के समान है, सिक्का डालो तो भी उनका ऐश्वर्य भगवान का दिखाई देता है। हालांकि दोनों प्रेम ही है, दोनों घी घी है, पिघला हुआ घी हो या गाढ़ा घी हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अंतर जो है वो उनके प्रेम भाव में अंतर है। और इसके लिए जब कृष्ण ने गोवर्धन उठा लिया तो ब्रजवासियों ने क्या कहा कि कछु माखन को बल बढ़ियो कछु गोपन करी सहाय और राधा जू की कृपासु गिरिवर लिया उठाए। बोले अरे कृष्ण तुमने ये गिरिवर उठा लिया तो क्या बड़ा कार्य किया, हाँ अरे हमारा ही माखन खाया है ना, हमारा माखन खाने से तुम्हारा बल बढ़ा, हमारा माखन खाने से जब तुम्हारा बल बढ़ा और क्या किया, तुमने जब पर्वत उठाया तो अकेले थोड़ी उठाया, हमने भी तो लाठियां लगाई वहां पर और इस प्रकार से क्या हुआ है। लेकिन अल्टीमेटली क्या था कि राधा रानी ने तुम्हारे पे कृपा कटाक्ष किया और इसीलिए तुम वो गिरधर को उठा पाए। इसलिए कृष्ण जो है वो हमेशा कहते हैं कि ये जो मेरे मित्र है, ये जो मेरे माता पिता है, मेरे जो गोपगण है, ये जो सखियां हैं और ये जो श्रीमती राधा रानी है, इसके प्रेम का कोई सानी नहीं है। वो कृष्ण कहते हैं कि मेरे सखा जो है वो मेरे कंधे पे चढ़ जाते हैं और मुझे कहते हैं कि घोड़ा बन के आगे चल। सखा शुद्ध सख्य करे स्कंधे आरोहण तुम्ही कौन बड़ा लोक तुम्ही आमी साम। और वो कहते हैं कि मेरी प्रिया श्रीमती राधा रानी अगर मेरी भत्सरना भी करती है तो वो मुझे वेद स्तुति से अच्छा लगता है। प्रिया यदि मान कोरी कराए भत्सरण वेद स्तुति है ते हारे से मोर मन। तो कृष्ण कहते हैं कि सो सुख नहीं ब्रह्म स्तुति में ऐसी मीठी ब्रज की गारी। तो उस गाली में कृष्ण को जब गोपियां राधा रानी जब अपने प्रेम से गाली देती है तो उनको बहुत अच्छा लगता है। ऐसा क्यों है, क्योंकि कृष्ण उससे अपार प्रेम करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जो है वो क्या है, अभी दो दिन पहले अमरेंद्र प्रभु जी ने क्लास दिया था और सौभाग्यवश मुझे हिंदी ट्रांसलेशन करने की सेवा प्राप्त हुई थी। उन्होंने बहुत ही एक अच्छा वर्स पढ़ा जो कि परम पूज्य महाविष्णु गोस्वामी महाराज इस वर्स को पढ़ते थे। श्री कृष्ण शरणम समस्त जगताम कृष्णम विना का गति कृष्णेन प्रति हन्यते कलिमलम कृष्णाय कार्यम नम कृष्णा त्रस्यति काल भी भुजगो कृष्णस्य सर्वम भवसेत कृष्णे भक्ति अखंडता भवतु मे भो कृष्ण तम एव आश्रय। तो ऐसे बताते हैं कि कृष्ण जो है वो समस्त कृष्ण शरणम समस्त जगताम कि सारे का सारा जग जो है वो भगवान श्री कृष्ण के शरणागत है, वो कृष्ण के शरण में रहता है। लेकिन वे कृष्ण का राधा रानी के शरण में जाने की कोशिश करते हैं। हम एक कथा कह के यहाँ पे विराम देंगे। तो कहते हैं कृष्णम विना का गति, कि कृष्ण के बिना कहाँ जाएंगे आप, क्योंकि जहां जहां जाओगे आप मुझे ही पाओगे। हाँ, कृष्ण कहते हैं कि कोई भी है हम सर्वस्य प्रभव मत्ता सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृक्षति। गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि मत्तः परंतर नान्य किंचित अस्ति धनंजय मई सर्वमिदम प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा। वह कहते हैं कि हे अर्जुन, तुझे और क्या समझने की जरूरत है, केवल तू इतना जान ले कि इस जग में चर अचर जो कुछ भी है वो सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। उसी तरह से जिस प्रकार से एक जो मोती जो होते हैं वो एक धागे पे आश्रित होते हैं, मैं वो धागा हूं जिस पर ये सारा का सारा जगत जो है वो आश्रित है। कृष्णम विना का गति कृष्णेन प्रति हन्यते कलिमलम, भगवान श्री कृष्ण का जो नाम है वो इस कलयुग के अवगुणों का बिल्कुल नाश कर देता है। और कृष्णे कार्यम नमः कि कृष्ण की जो क्रियाएं हैं जो एक्टिविटी है उसका सब लोग नमन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अघासुर का वध किया, पहले ब्रह्मा जी को समझ में नहीं आया, ब्रह्मा जी ने उनका परीक्षा लेना चाहा, लेकिन बाद में ब्रह्मा जी को समझ में आ गया और ब्रह्मा जी कृष्ण से प्रार्थना करने लगे कि हे कृष्ण, मैं अपने इस चार शिर को लेके और जिसके अंदर पूर्ण ज्ञान भरा हुआ है उससे केवल एक चीज समझ सका हूं कि मैं आपको कभी नहीं समझ सकता। उनके गोवर्धन लीला से इंद्र जो थे वह विस्मित हो गए और अपने आप कृष्ण से क्षमा मांगने में उनको शर्म आई, तो सुरभि माता सुरभि गाय को लेके आए और उन्होंने, तो कृष्ण की जो क्रियाएं हैं उनकी जो लीलाएं हैं वो बहुत अद्भुत है। और कृष्णा त्रस्यति काल भुजगो, और ये जो समय है, समय का जो ये काल सर्प है, ये जो है वो कृष्ण उसको पूर्णतया नष्ट कर सकते हैं, उसको मार सकते हैं। जिस प्रकार से कृष्ण ने कालिया के सिर पे नृत्य किया और उसका दमन किया, उसी प्रकार से इस काल भुजक का जो दमन है वो कृष्ण कर सकते हैं। और कृष्ण से सर्वम वसेत, सारे के सारे लोग जो है, जो चर अचर ये नक्षत्र सारे जो कुछ भी है वो कृष्ण के आश्रित है और वो कृष्ण के वश में रहते हैं। और कृष्णे भक्ति अखंडता भव तुम्हें, कि मैं, वो भक्त कहता है कि मैं भगवान श्री कृष्ण से ऐसी प्रार्थना करता हूं कि मेरे को भगवान श्री कृष्ण की अहेतु की अप्रतिहिता अखंडिता भक्ति वो प्राप्त हो। और भो कृष्ण तम एव आश्रय, और कृष्ण के आश्रय में शरणागति के जो छह लक्षण है, अनुकूल्य से संकल्प प्रतिकूल्य से वर्जनम, ये जो है इसका मैं पालन करते हुए भगवान श्री कृष्ण की शरण लूं, तो ये भगवान श्री कृष्ण है जो समस्त जगत के आश्रय है। हाँ, उनके बिना किसी की कोई गति नहीं है, उनका पवित्र नाम कलयुग के सब अवगुणों का नाश कर सकता है। कृष्ण के कार्य जो है वो इतने अद्भुत है, लोगों को चकित करने वाले हैं, सभी कुछ कृष्ण के वश में है। कृष्ण की अखंड भक्ति हम चाहते हैं और कृष्ण का आश्रय लेना चाहते हैं। और ऐसे कृष्ण क्या करते हैं, ऐसे कृष्ण श्रीमती राधा रानी का आश्रय लेते हैं। तो प्रभुपाद जी ने जैसे बताया कि कृष्ण जो है वो परम नियंता है, लेकिन वो राधा रानी के द्वारा नियंत्रित है, राधा रानी के प्रेम से नियंत्रित है। इसीलिए अगर कृष्ण धनवान है तो कृष्ण का धन कौन है, राधा रानी है। कृष्ण शक्तिमान है तो वो शक्ति कौन है, राधा रानी है। कृष्ण अगर बुद्धिमान है तो उनकी बुद्धि कौन है, वो श्रीमती राधा रानी है। कृष्ण अगर यशवान है तो उनको यश देने वाली कौन है, वो श्रीमती राधा रानी है। और कृष्ण अगर भाग्यवान है तो उनका भाग्य जो है वो श्रीमती राधा रानी है। तो भगवान, अगर कृष्ण भगवान है तो उनका ये जो भग या ऐश्वर्य जो है वो श्रीमती राधा रानी है। और प्रभु जी बहुत ही अच्छी तरह से बता रहे थे कि कृष्ण जो है वो सीधे नहीं खड़े रहते हैं, वो तीन जगह से त्रिभंग स्वरूप में है, बेंडिंग फॉर्म में है। तो क्यों तीन जगह से कृष्ण झुक जाते हैं, क्योंकि कृष्ण के मन में, जैसे कि श्रीमती राधा रानी अपने मन में हमेशा कृष्ण को धारण किए रहती है और हमेशा अपने विचारों में कृष्ण को रखती है, इसलिए कृष्ण उनके मन के वशीभूत होकर एक जगह से बैंड हो जाते हैं। फिर राधा रानी जो है वो अपनी वाणी से कृष्ण के हमेशा प्रसन्न करती है, प्रार्थना करती है और उनको प्रेम देती है, और इसीलिए राधा रानी की वाणी की वजह से वो दूसरी जगह से मुड़ जाते हैं। और तीसरा कर्मणा, राधा रानी का जो भी कार्य होता है वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होता है। राधा रानी अगर कुकिंग करती है, भोग बनाती है केवल कृष्ण के लिए, अपने आप को श्रृंगार करती है तो कृष्ण के लिए, कोई अगर कुछ वाद्य बजाती है तो कृष्ण के लिए, अगर वो गाना गाती है तो कृष्ण की सेवा के लिए, केवल कृष्ण की प्रसन्नता जो है वही राधा रानी का एकमेव ध्येय होता है, और इसलिए अपने कार्यों से भी वो कृष्ण को झुका देती है। तो राधा रानी अपने मनसा वाचा और कर्मणा, इस तीन की वजह से कृष्ण को तीन जगह से झुका देती है और कृष्ण त्रिभंग बन जाते हैं। और ऐसे कृष्ण त्रिभंग जो है वो भक्तों के हृदय के अंदर जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। और हम राधे वृंदावनेश्वरी के बारे में सिर्फ एक छोटी सी कथा कह के यहाँ विराम देना चाहेंगे, क्योंकि राधा अष्टमी का महामहोत्सव आ रहा है। तो एक बार एक बहुत बड़े प्रकट भक्त श्री जयदेव गोस्वामी, जिन्होंने गीत गोविंद की रचना की है, जो आज भी श्री जगन्नाथपुरी के मंदिर में रोज गाया जाता है, वे एक बार एक श्लोक का अनुवाद कर रहे थे, उसकी रचना कर रहे थे, और वो श्लोक आया, वो पद ऐसा था कि राधा रानी जो है वो रूठी हुई है, उन्होंने मान कर लिया है, जैसे बरसाना में मान मंदिर है, जो राधा कृष्ण का सर्वोच्च लीला जो है उस मान मंदिर वहां पर हुई है, तो वो राधा रानी मान करके बैठी हुई है और कृष्ण उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं और राधा रानी मान नहीं पा रही है। कृष्ण इतना भरसक प्रयास करते हैं उनको मनाने का और अल्टीमेटली कृष्ण उनके पैरों में गिर जाते हैं और अपना सर उनके पैरों में रख के और उनको मनाने की कोशिश करते हैं। तो जब जयदेव गोस्वामी इस पद को का अनुवाद कर रहे थे तो उनका हाथ कांपने लगा। उन्होंने सोचा कि बाप रे बाप, मैं ऐसा कैसे लिख सकता हूं कि जो पूर्ण पुरुषोत्तम ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम, ऐसे कृष्ण जो है वो राधा रानी के चरणों में गिरे हैं। हाँ, तो हालांकि उनको समझ तो आया था कि ये सत्य है, ये भगवान की लीला हुई है, उनको भी पता था, लेकिन कुछ वजह से उनका हाथ कांपने लगा। तो उन्होंने सोचा कि चलो मैं काम करता हूं, यमुना में स्नान करके आता हूं और स्नान करके फिर आके, और जब थोड़ा मेरे मन के अंदर और थोड़ा मनन शक्ति मेरी बढ़ जाएगी, थोड़ा दिमाग ठंडा हो जाएगा, तब मैं आके इसकी रचना कर लूंगा। तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि आप प्रसाद बना के रखो, मैं स्नान करके आता हूँ, और वे चले गए। लेकिन दो मिनट में वापस से आ गए और अपनी पत्नी को कहा कि अरे, तो पत्नी ने कहा अरे आप वापस कैसे आ गए, आप तो स्नान के लिए गए थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं वो पद जो है वो मुझे पूरा करना था, मुझे याद आ गया, अभी मैं पूरा करके जाता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, वो पद पूरा कर दिया। तो हालांकि वो जो थे वो जयदेव गोस्वामी नहीं थे, लेकिन कृष्ण स्वयं थे जो जयदेव गोस्वामी का रूप लेके और अपनी लीला का अनुवाद पूर्ण करने के लिए वो आए थे वहां पर, और उन्होंने उस पद को रचना को पूर्ण किया अपनी अपनी खुद की लिखावट से, और फिर अपनी पत्नी को कहा कि चलो मुझे प्रसाद दो, और उन्होंने फिर प्रसाद ग्रहण किया और ग्रहण करके वो चले गए। और आधे घंटे के बाद जो ओरिजिनल जयदेव गोस्वामी थे वो वापिस से आए और अपनी पत्नी को कहने लगे कि चलो चलो प्रसाद दो मुझे। तो पत्नी भी सोचने लगी इनको क्या हो गया, अभी तो प्रसाद लिया था इन्होंने आधे घंटे पहले और वापस से प्रसाद मांग रहे हैं, कितनी बार प्रसाद लेंगे। और फिर उन्होंने उनको कहा कि अरे स्वामी, अभी तो आपने प्रसाद लिया था। उन्होंने कहा मैंने कब प्रसाद लिया, मैं तो स्नान करने के लिए गया था। तो कहा नहीं, आप जब स्नान करने गए तो दो मिनट में वापिस आ गए और आपने कहा कि ये पद मुझे पूरा करना है, और आप जाके आपने अपना पद पूरा किया, प्रसाद लिया और फिर आप वापिस से चले गए। तब जयदेव गोस्वामी को माथा ठनका और वो अंदर दौड़ के गए और देखा तो कृष्ण भगवान अपनी खुद की लिखावट से अपने हस्ताक्षर को वहां पर छोड़ के और वे लिख के वो अनुवाद पूरा करके गए कि राधा रानी जब मान करती है तो कृष्ण अपना सर राधा रानी के चरणों में रख देते हैं। तो कृष्ण जो है वो परम नियंता है, लेकिन राधा रानी जो है वो कृष्ण को नियंत्रित करती है, कृष्ण का कृष्ण के इतनी शक्ति है, इस प्रकार से राधा रानी उसको नियंत्रित करती है। और ऐसी राधा रानी की कृपा कटाक्ष की प्रार्थना हम सभी भक्तों को करना चाहिए, लेकिन किस प्रकार से, पंच तत्व के माध्यम से। पंच तत्वात्मतम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। तो शिला प्रभुपाद ने और सभी भक्तों ने हमको बताया है कि कृष्ण प्रेम जो है वो हमारे जीवन का लक्ष्य है। हाँ, कृष्ण की प्रेममयी सेवा हमारे जीवन का लक्ष्य है। और यदि कृष्ण को प्राप्त करना है, कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना है, तो राधा रानी की कृपा की याचना और उनकी कृपा प्राप्त करनी पड़ेगी। और राधा रानी की कृपा हमको तब तक प्राप्त नहीं हो सकती है जब तक श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा हमको प्राप्त ना हो। और श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा हमको तब तक प्राप्त नहीं होगी जब तक कि नित्यानंद प्रभु की कृपा हमको प्राप्त ना हो। और नित्यानंद प्रभु की कृपा हमको तब तक प्राप्त नहीं होगी जब तक हम अपने गुरु और वैष्णवों की कृपा प्राप्त न करें। तो हमारा प्रोसेस क्या है कि वैष्णवों को प्रसन्न करना, अपने गुरु को प्रसन्न करना, अपने गुरु की सेवा करना, नित्यानंद प्रभु जो कि आदि गुरु के मूल है, और फिर कलयुग अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा श्रीमती राधा रानी को प्रसन्न करते हुए भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना। इसके लिए वैष्णवानाम परम संभो, हाँ, शिव जी जो कि परम वैष्णव है वे भी राधा रानी की कृपा कटाक्ष की प्रार्थना करते हैं। और उन्होंने श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तव राज की रचना की है जिसके अंदर वे कहते हैं, मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वदेश्वरी सुरेश्वरी त्रिदेव भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी व्रजेश्वरी व्रजाधिपेशी राधिका नमोस्तुते। वे कहते हैं कि हे वैदिक बलिदानों की रानी, हे पवित्र गतिविधियों की रानी, हे भौतिक जगत की रानी, हे लोकतंत्रों की रानी, हे वैदिक विज्ञानों की रानी, हे ज्ञान की रानी, हे भाग्य की देवियों की रानी, हे धैर्य की रानी, हे वृंदावन की रानी, हे खुशी का वन, हे व्रज की रानी, हे साम्राज्ञी, हे श्री राधिका, श्रीमती राधा रानी, मैं आपका सम्मान और नमस्कार करता हूँ और आपके कृपा कटाक्ष आपकी कृपा के कटाक्ष की याचना करता हूँ। और इस प्रकार से हम सभी वैष्णवों गुरु और हरि को याद करते हुए यहीं पे अपने इस छोटे से प्रवचन का विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, जय श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, जय श्रीमती राधा रानी की, जय जय श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की, जय जय श्री पंचतत्व की, जय जय श्रील प्रभुपाद की, जय श्रील गुरुदेव की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, जय निताई गौर प्रेमानंदे, हरि 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 बोल, जय 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 श्री राधे श्याम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, डन। यस यस प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।